नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्या नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवतम चौथा स्कंद आठवां अध्याय, ध्रुव महाराज का गृह त्याग और वनगमन। श्लोक संख्या 17। दीर्घम श्वसन्ति व्रजिनस्य पारम अपश्यति बालकम् आह बाला मा अमंगलम तात परेषु मंस्थाः भुङ्क्ते जनः यत् परदुःखदः तत् दीर्घं श्वसन्ति व्रजिनस्य पार अपश्यति बालकम् आह बाला मा मङ्गलं तात् परेषु मंस्था भुङ्क्ते जनो यत् परदुःखदस्तत्। दीर्घम अत्यधिक, श्वसन्ति सांस लेती हुई, व्रजिनस्य संकट की, पारम सीमा, अपश्यति बिना पाए, बालकम अपने पुत्र से, आह कहा बाला स्त्री ने, मा मत अमंगलम अशकुन तात मेरे पुत्र, परेशु अन्यों को, मनस्थाह कामना भुंकते भोग करता है, जनह व्यक्ति यत जो, परदुःखदह जो दूसरों को पीड़ा पहुंचावे, तत वह। अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। वह तेजी से सांस भी ले रही थी और वह इस दुखद स्थिति का कोई इलाज नहीं ढूंढ पा रही थी, अतः उसने अपने पुत्र से कहा, हे पुत्र, तुम अन्यों के अमंगल की कामना मत करो। जो भी दूसरों को कष्ट पहुंचाता है वह स्वयं दुख भोगता है। इस श्लोक में तात्पर्य नहीं है, अगले दो श्लोक भी हम पढ़ेंगे। सत्यम सुरुच्या भीतम भवान में यद दुर्भगाया उदरे गृहीतः स्तन्येन वृद्धश्च विलिज्यते याम भार्येति वा वोढुमिदस् पितिर्माम्। अनुवाद। सुनीति ने कहा, प्रिय पुत्र, सुरुचि ने जो कुछ भी कहा है वह ठीक है, क्योंकि तुम्हारे पिता मुझको अपनी पत्नी क्या अपनी दासी तक नहीं मानते, उन्हें मुझको स्वीकार करने में लज्जा आती है। अतः यह सत्य है कि तुमने अभागी स्त्री की कोख से जन्म लिया है और उसके स्तनों का दूध पीकर बड़े हुए हो। श्लोक संख्या 19। आतिष्ठतत्तात् विमत्सरस्त्व मुक्तं समात्रापि यदव्यलीकम् आराधयोधोक्षजपादपद्मं यदिच्छसे ध्यासनमुक्तमो यथा। अनुवाद और तात्पर्य। अनुवाद। प्रिय पुत्र, तुम्हारी विमाता सुरुचि ने जो कुछ कहा है, यद्यपि वह सुनने में कटु है, किंतु है सत्य। अतः यदि तुम उसी सिंहासन पर बैठना चाहते हो जिसमें तुम्हारा सौतेला भाई उत्तम बैठेगा, तो तुम अपना ईर्ष्या भाव त्याग कर तुरंत अपनी विमाता के आदेशों का पालन करो। तुम्हें बिना किसी विलंब के श्री भगवान के चरण कमलों की पूजा में लग जाना चाहिए। अठारहवें 17वें श्लोक का अनुवाद दोहराइएगा। वह तेजी से सांस भी ले रही थी और वह इस दुखद स्थिति का कोई इलाज नहीं ढूंढ पा रही थी। अतः उसने अपने पुत्र से कहा, हे पुत्र, तुम अन्यों के अमंगल की कामना मत करो। जो भी दूसरों को कष्ट पहुंचाता है वह स्वयं दुख भोगता है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षुर उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्री गुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु नमो गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो माता सुनीति बालक ध्रुव को समझा रही हैं और कह रही हैं कि दूसरों के प्रति ईर्ष्या की भावना मत रखो। सुनीति महारानी को भी बहुत दुख हुआ, जितना दुख ध्रुव महाराज को हुआ जब माता सुरुचि ने ऐसे कटु वचन उनसे बोले, उससे ज्यादा दुख माता सुनीति को हुआ। लेकिन माता सुनीति ठंडे दिमाग से सोच रही थी। उनका स्वभाव अच्छा होने की वजह से, धार्मिक होने की वजह से वो सोचने लगी कि हालांकि सुरुचि ने कटु वचन बोले हैं, लेकिन बात तो सत्य है। सत्य ये है कि राजा उत्तानपाद में मुझे स्वीकार नहीं करते हैं, रानी तो क्या मुझे दासी के रूप में भी स्वीकार करना नहीं चाहते हैं, मुझे स्वीकार करना उनके लिए लज्जा की बात है। तो जिस रानी को दासी के रूप में भी लज्जा, स्वीकार करने में लज्जा आती है राजा को, तो भला उस स्त्री से जन्मा पुत्र राज सिंहासन पर कैसे बैठ सकता है। ये सच्ची बात है, ध्रुव महाराज को समझा रहे थे सुनीति कि तुम्हारे पिता की भावना मेरे प्रति ऐसी है, तो जो सुरुचि महारानी कह रही है वो सच है। हालांकि कभी कभी वचन कटु होते हैं, लेकिन अगर वो सत्य हैं तो उन्हें हमें स्वीकार करना चाहिए। तो इसी प्रकार से हमारे बारे में भी कई बार अगर लोग कुछ कटु वचन बोल देते हैं, हमें ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए क्या ये बातें सही है। भले किसी ने गलत तरीके से कह भी दिया हो, भले गलत आदमी ने भी कह दिया हो, भले ऐसे व्यक्ति ने कह दिया हो जो खुद उस बात का आचरण नहीं कर रहा हो, भले हमारे सबसे बड़े शत्रु ने भी कह दिया हो, भले छोटे से बालक ने भी कह दिया हो, भले अभक्त ने भी कह दिया हो, बड़े एक रास्ते के गुंडे मवाले ने भी कह दिया हो, भले किसी ने भी कह दिया हो, लेकिन अगर बात सत्य है तो हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। जहां तक हमारे भलाई का सवाल है, हमें अच्छे उपदेश हर एक जगह से ग्रहण करने चाहिए। इसमें अहंकार बीच में नहीं आनी चाहिए। मुझे अभी तक याद है कि जब हम पहले भक्त बने तो उस समय एक पहचान वाले थे जो हमेशा भक्ति और हरे कृष्ण वालों की निंदा करते थे, तो हम उनको हमेशा उनके सारे प्रश्नों का उत्तर दिया करते थे, फिर उनके कोई प्रश्न नहीं रह जाते थे और उनको बुरा लगता था कि हमको हरा नहीं पाए हैं। तो कुछ ना कुछ हमेशा बात ढूंढते थे जिसमें हमारी चूक निकाले, हमारी गलती निकाले, जैसे कि कह सके कि ये तुम लोग क्यों करते हो ऐसे। आप सबका अनुभव ऐसे होगा कि ऐसे हमेशा कोई व्यक्ति मिलते हैं जिनको भक्ति की बात अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो हमेशा गलती ढूंढना चाहते, बस इंतजार करते हैं कि क्या पॉइंट निकालेंगे आपको, आपकी निंदा करने के लिए। तो ऐसे एक दिन अचानक उनको मन में आया और हमारे जूतों को देखकर बोलने लगे, अरे ये आप चमड़े के जूते क्यों पहन रहे हो, आप तो गो हत्या वगैरह ये करते हो। तो हालांकि उन्होंने अच्छे ढंग से नहीं कहा था, गलती खास करके ढूंढने के दृष्टि से कहा था, लेकिन फिर भी मन में यह आया कि हाँ ये बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, भले किसी भी भावना से क्यों ना बोल रहे हो, कितने दिन से ऐसे मौके का इंतजार क्यों ना कर रहे हो, लेकिन फिर भी जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। तो तुरंत एक ऐसा झटका जैसा लगा, मैंने सोचा अरे ये बात सही है, मैं तो चमड़े के जूते पहन रहा हूं, ये तो हमारे लिए ठीक नहीं है। तो ठीक उसी समय उनके सामने मैंने कहा, धन्यवाद आपने सही बताया। वो जूतों को हाथ में लिया, कचरे के डब्बे में डाल दिया, उस दिन से चमड़े के जूते पहनना बंद कर दिया। तो इसको देखकर वो इतने प्रभावित हो गए कि उस दिन के बाद उन्होंने बोलना ही बंद कर दिया। और एक बार ऐसे ही बात हुई कि पहले पहले जब हम भक्ति में आए तो और एक ऐसे सज्जन थे जिनसे वो हमेशा हमसे तर्क करने में इच्छुक थे। तो उसमें एक बार हम कहीं हमें खिलाने पिलाने हम साथ में गए थे, तो उस जमाने में केक खाया करते थे, बाहर के केक, और बाहर के केक में जैसे आपको मालूम है अंडा मिलाते हैं, लेकिन उस समय हमको ख्याल नहीं था कि इसमें अंडा मिलता है, बस यही खाते थे, अभ्यास था, खाते थे, बहुत साल पहले की बात है। तो उनको वो भी कोई पॉइंट ढूंढना चाहते थे। अचानक उनको भी मन में आया कि अरे आप ऐसे कहते हो शाकाहारी ये वो, लेकिन इसमें अंडा है, आप क्यों खाते हो? सोचारे ये बात सही है, हमने सोचा ही नहीं इसके बारे में कि इसमें अंडा हो सकता है। तो आधा जो एक टुकड़ा खाया था बहुत अच्छा था स्वाद उसका, लेकिन एक छोटा सा टुकड़ा खाया था और सारा जो बड़ा पीस केक का पड़ा था नीचे, तो हाँ सही बात, तुरंत पीछे कर दिया। तो उनको इतना बुरा लगा, तो कहा नहीं एक बार तो भी खा लो जो एक बार शुरू कर लिया। नहीं, जब हमको समझ में आया कि ये आपने कहा जो सही है वो हमें नहीं करना चाहिए, तुरंत वहीं का वही छोड़ दिया। तो वो भी उनका मन बहुत प्रभावित हो गया, उसके बाद वो चुप रहे, कभी कुछ नहीं बोला हमसे। अगर हम बोलते कि ठीक है, उनसे तर्क करते आगे, जब हमें मालूम है कि ये गलत है और हम तर्क कर रहे हैं उनसे केवल अहंकार से, तो और भी गुस्सा होकर वो गलत भावना रखते हरे कृष्ण वालों के प्रति। लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये लोग अपनी गलती सुनते हैं तो स्वीकार करते हैं, तो लोगों का हृदय पिघल जाता है। तो हालांकि हमारे अहंकार को चोट पहुंचता हो, लेकिन अगर कोई गलत भावना से भी कोई ऐसे सही बात बोले, हमें समझना चाहिए कि कृष्ण ही बोल रहे हैं उनके माध्यम से, हमारे भलाई के लिए बोल रहे हैं। अच्छे व्यक्ति से, एक अधिकारी व्यक्ति से जिनका हम सम्मान करते हैं, जिनको हम स्वीकार करते हैं, जिनसे हम प्रेम करते हैं, उनसे कोई अगर बात ऐसे सुनते हैं कि हमारी गलती ऐसी ऐसी है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो कोई भी स्वीकार कर सकता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति से सुनना जिनको हम स्वीकार नहीं करते हैं, जिनसे हम प्रेम नहीं करते हैं या सम्मान नहीं देते उनको, ऐसे व्यक्ति से हमारी गलती सुनना कभी कभी कठिन होता है। लेकिन भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने वाले, अगर वास्तव में हमारी इच्छा है आगे बढ़ने की इस मार्ग पर, तो हमें खुला हृदय रखना चाहिए, और जहां से भी अच्छे विचार आए, जहां से भी हमारी गलतियां कोई ढूंढ निकालें, और उस गलतियों को सुधारने से, ठीक करने से अगर हम भक्ति मार्ग में आगे बढ़ सकें, हमारे दुर्गुण मिट सकें, तो फिर हमें उन चीजों को स्वीकार करना चाहिए, और हमें उस व्यक्ति का धन्यवाद करना चाहिए कि आपने हमारी गलती का एहसास हमें दिलाया है, हम आप बहुत आभारी हैं आपके। अगर ऐसे करेंगे तो देखिए, पहली बात तो ये है कि वो हमारे भलाई के लिए है, हम आगे प्रगति कर सकते हैं। दूसरी बात, क्योंकि हमने नम्र स्थान ग्रहण किया है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा प्राप्त होती है। और तीसरी बात, जो सामने वाला आदमी है जो हमारे प्रति शायद द्वेष भावना रख रहा हो, वो भी हमारे प्रति अच्छे भावना से देखना आरंभ करेगा और हमारे संबंध भी अच्छे हो जाएंगे। तो इस प्रकार से कहीं से भी हमारे गलतियों का एहसास हमें दिलाया जाए तो हमें उसे स्वीकार करना चाहिए, भले वो कटु शब्द क्यों ना हो, अच्छे शब्द क्यों ना हो। और दूसरी ओर, अगर कोई हमारी प्रशंसा करे, हमेशा उसका होशियार रहना चाहिए, भले हमसे हमारे कोई प्रिय व्यक्ति भी क्यों ना हो, भले हमसे कोई दूर रहने वाले द्वेषी क्यों ना हो, उससे हमेशा संशय से देखना चाहिए। संशय किस बात के लिए? अविश्वास से देखना चाहिए कि ये जो बोल रहे हैं इनके लिए ठीक है, लेकिन वास्तव में सत्य नहीं है, ये जो मेरी प्रशंसा कर रहे हैं ये प्रशंसा सत्य नहीं है, हमें ऐसे ही स्वीकार करना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वास्तव में यही एक बुद्धिमान व्यक्ति है, इन्होंने ही हमें समझ लिया है, हमारे अच्छे गुण इन्हीं को समझ में आए, बाकी सब नालायक हैं, हमारे अच्छे गुण उनको समझ में नहीं आए। नहीं, जब भी हमारी कोई प्रशंसा करता है तो हमें सोचना चाहिए कि ये बात सत्य नहीं है, ये इतने अच्छे व्यक्ति हैं, इनको हमारे अंदर अच्छे गुण दिखाई पड़ रहे हैं, ये वैष्णव है या अच्छे आदमी है इसलिए ये हमारी प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर ऐसे कोई गुण नहीं है जो प्रशंसनीय है, वास्तव में ये सच्ची बात नहीं है। लेकिन अगर वही आदमी किसी दूसरे वैष्णव की प्रशंसा करे, तो तो तुरंत हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। उस समय यह नहीं संशय करना चाहिए कि ये व्यक्ति उनको नहीं जानते, हम जानते उनको, ये क्या है, हमने बहुत देख लिया इनको, हम जानते हैं इनको। नहीं, दूसरे वैष्णव की प्रशंसा हो रही हो तो हमें प्रसन्न होना चाहिए, हमें आनंद लेना चाहिए। ईर्ष्या की भावना अलग अलग तरह से प्रकट होती है। पहली बात, जब कोई हमारी निंदा करता है, या दूसरी बात, जब कोई किसी दूसरे की प्रशंसा करता है तो हृदय में बहुत जलन होती है, एक अग्नि जलने लगती है। यह प्रशंसा हमारी ओर क्यों नहीं आई, उस व्यक्ति की ओर क्यों चली गई, रॉन्ग नंबर क्यों हो गया। तो इस प्रकार से ये ईर्ष्या की भावना को हमें त्याग करने का प्रयास करना चाहिए। जितना हम अपने प्रशंसा सुनकर दुखी होंगे, जितना हम दूसरों की प्रशंसा सुनकर, खास करके वैष्णवों की प्रशंसा सुनकर खुशी होंगे, जितना हम दूसरों की प्रशंसा करने के लिए आतुर होंगे, उतना ही हम ईर्ष्या की भावना से मुक्त हो सकते हैं। तो इसलिए हमारी गलतियों को सुनने में हमें कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, कोई द्वेष भावना नहीं रखनी चाहिए, हमेशा नम्र स्थान लेना चाहिए। इसमें हमारी भी भलाई है और उस व्यक्ति की भी भलाई है जो हमारी निंदा कर रहा है। अगर हम उसके प्रति आक्रमण का एक स्थान स्वीकार करें और उनसे तर्क वितर्क करने लगे, झगड़ा करने लगे, तो वो भी झगड़ा करने लगेगा और वो भी ज्यादा भक्तों की निंदा करेगा या वो भी अपराध करेगा, इसलिए उसमें उसकी भी बुराई है। इसलिए अगर हम नम्र स्थान लेंगे तो हम दोनों की भलाई इसमें है और सुनने वाले की भी भलाई इसमें है। तो इसीलिए सुरुचि माता ने, सुनीति माता ने बहुत ठंडे दिमाग से अच्छा उपदेश दिया ध्रुव महाराज को। क्या उपदेश दिया कि देखो, हालांकि तुम्हारे विमाता सुरुचि महारानी ने तुम्हारे प्रति बहुत कटु वचन बोले हैं, लेकिन फिर भी ये सही बात है, ये सत्य है, इसलिए तुम स्वीकार करो इसे। और ये जो ईर्ष्या की भावना तुम्हारे हृदय में है सुने सुरुचि महारानी के प्रति, उसे तुम त्याग दो, क्योंकि सच्ची बात है। और कभी भी उनके प्रति अमंगल की कामना नहीं करना। देखो कितने अच्छे उपदेश दे रहे हैं सुनीति महारानी। वो कह रहे हैं कि पहली बात, पहला उपदेश क्या सिखाया सुनीति महारानी ने ध्रुव को, कि अगर भी कोई तुम्हारे प्रति कटु वचन बोले, अगर वो सत्य हो तो उसे स्वीकार करो, पहली बात। और दूसरी बात क्या सिखाई, कि अगर भी ऐसे कोई तुम्हारे प्रति कटु वचन बोलता है और वो सत्य है, चाहे वो सत्य नहीं भी हो, लेकिन फिर भी तुम्हें उस व्यक्ति के प्रति ईर्ष्या की भावना नहीं रखना चाहिए। हमें हमेशा सोचना चाहिए कि ये कृष्ण ही बोल रहे हैं इनके प्रति, हमें नम्र बनाने के लिए, हमारी परीक्षा लेने के लिए। इसलिए उनके प्रति ईर्ष्या की भावना नहीं रखनी चाहिए। हाँ, अगर कोई दूसरे वैष्णवों के प्रति, कृष्ण के प्रति, भक्ति मार्ग के प्रति कोई कटु वचन बोले तो हमें उसका प्रतिकार करना चाहिए। किस ढंग से उसका सामना हमें करना चाहिए, वो कृष्ण भगवान से हमें सही बुद्धि देने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि कैसे उनका ठीक से उत्तर दे दें, कैसे उनका सही तरह से प्रतिकार करें। लेकिन अपने बारे में कोई बोले तो हमें ईर्ष्या की भावना उनके प्रति नहीं रखनी चाहिए। देखिए, ध्रुव महाराज के प्रति जो सुरुचि महारानी ने शब्द बोले थे बहुत ही कटु थे। हमारे साथ अगर ऐसे कोई बोले तो हमारी क्या दशा होगी। कोई कहे कि हमारे अपमान करे, हमारे माँ का ही अपमान करे, और कहे कि तुम जिस जन्म गोद से, जिस गर्भ से जन्म लिए हो वो ठीक नहीं है, मेरे गर्भ से जन्म लेना होगा तब तुम कुछ काम की योग्य होगे, तो हमारे मन में कैसी धारणा होगी, क्या विचार होंगे। तो ध्रुव महाराज भी स्वाभाविक है कि गुस्से हो गए थे, लेकिन माता सुनीति ने उनको समझाया कि नहीं, कभी भी किसी भी अवस्था में किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति अमंगल की कामना नहीं करो। अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे प्रति बुरा भी व्यवहार करता है, कटु वचन बोल भी देता है, भले वो सत्य हो नहीं हो दूसरी बात है, लेकिन देखने वाले भगवान है उसको। हम उनको दंड देने वाले या नहीं देने वाले कौन होते हैं? भगवान तो साक्षी हैं, भगवान सब देख रहे हैं। और इसलिए आगे यहां सुनिश्चित महारानी बता रही हैं कि जो भी दूसरों को दुख पहुंचाता है उसे भी वही दुख भुगतना पड़ता है। भुंगते जनो यत पर दुखदस्तत, पर दुखद जो दूसरों को पर परेशु मतलब दूसरों को दुखदा जो दुख पहुंचाता है, भुंगते उसे खुद दुख भोगना पड़ता है। इसलिए हमें दूसरों को कभी भी दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। इसलिए वैष्णव बड़े करुणामयी रहते हैं, करुणा के सागर रहते हैं, दूसरों को कभी भी दुख पहुंचाने की इच्छा नहीं रखते हैं। वैष्णव होते हैं पर दुख दुखी, दूसरों को दुख होता है तो उनको दुख होता है। इसलिए दूसरों को दुख पहुंचाने के बाद तो दूर है, दूसरों के दुख को देखकर ही वो दुखी हो जाते हैं। इसलिए हमेशा जन कल्याण के कार्य में लगे हुए होते हैं वैष्णव। सबसे परम जन कल्याण का कार्य कौन सा है? लोगों को कृष्ण भक्ति के मार्ग में लाना, जिससे कि उनका सही कल्याण हो, उनका हमेशा के लिए शाश्वत कल्याण हो, जिससे उनको भौतिक संसार के कष्ट से हमेशा के लिए मुक्ति मिले और जिससे वो भगवान के धाम में जाकर भगवान का निजीय संग करें और कृष्ण प्रेम का जो सबसे बड़ा स्वाद है, रुचिला रसमय स्वाद है, उसका वो उसका आस्वादन करें। तो ये जन कल्याण का कार्य है। इसलिए वैष्णव हमेशा चाहते हैं कि दूसरों को परम आनंद प्रदान करें, कभी दूसरों को दुख देना नहीं चाहते हैं। इसलिए जब हम भक्ति मार्ग में चल रहे हैं तो हमें भी इस बात को बहुत ध्यान से सुनना होगा, समझना होगा और उसका अमल भी करना होगा कि खामखा दूसरों को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। हाँ, अगर हमारी स्थिति ऐसे है और हम किसी को उपदेश दे रहे हैं, किसी की गलती ठीक करा रहे हैं, और अगर हमारा हमारी स्थिति है वैसे, हमारा अधिकार वैसे है, तो करुणा की दृष्टि से उनको हम उनकी गलती का एहसास दिला सकते हैं, उनको ठीक समझा सकते हैं, कभी कभी उनको डांट भी सकते हैं। जैसे माता पिता को कभी कभी बच्चों को डांटना पड़ता है, नहीं तो वो गलत रास्ते पर चले जाते हैं, और इससे हो सकता है कि बच्चे के मन में दुख हो, लेकिन क्योंकि माता पिता की भावना सही है और इस सही भावना से वो देख रहे हैं कि बच्चे की भलाई के लिए क्या है, तो ऐसे जो कार्य हैं उनसे अगर दूसरे को दुख पहुंचता भी हो, लेकिन क्योंकि वो उसकी भलाई के लिए है इसलिए अच्छा है। जैसे एक उदाहरण, जो मृत्यु दंड है, मृत्यु दंड बहुत आवश्यक है खूनी के लिए। किसी व्यक्ति ने खून किया है और अगर उसको मृत्यु दंड नहीं मिलता है तो उसके लिए और सबके लिए बहुत बुरी बात है, क्योंकि जो व्यक्ति किसी दूसरे का खून करता है उसे बहुत दुख भुगतना पड़ेगा इस जन्म में भी और अगले जन्म में भी। अगले जन्म में उसे नरक लोक में जाना पड़ेगा और लंबे समय तक उसे बहुत पीड़ा सहन करने पड़ेगी। लेकिन अगर राजा उसे सही तरह से पकड़ के उसे मृत्यु दंड दे देता है तो जो नरक जाना है वो बंद हो जाता है उसका, उस वो नरक से बच जाता है, और जो भी उसने पाप किया है खून के रूप में उसकी सजा उसे एक क्षण में मिल जाती है। जब उसकी मृत्यु हो जाती है, मृत्यु दंड हो जाता है, तो उस मृत्यु से ही उसके पाप का प्रायश्चित हो जाता है। तो देखिए, एक क्षण में उसे पाप से मुक्ति मिल जाती है। लेकिन अगर करुणा कृपा के नाम से, के नाम के ऊपर राजा ने सोचा कि नहीं नहीं इसको कृपा दे दो, इसको छोड़ दो, केवल 20 साल जेल में डालो और फिर उसे रिहा कर दो, छोड़ दो, तो ये करुणा नहीं है, ये तो क्रूरता है। क्योंकि आप उसे नरक जाने के लिए आप अवसर दे रहे हो। नरक में जाएगा उसे बहुत यहां दुख सहन करना पड़ेगा, और दूसरी बात उसे ठीक भी मार्ग पे भी नहीं ला रहे हो, और तीसरी बात कि समाज के लिए बुरा उदाहरण है कि आज कोई खून करेगा सोचेगा मेरा तो मेरी हत्या मेरी मृत्यु नहीं होगी, तो भय भी नहीं होगा लोगों में। तो वैदिक पद्धति के अनुसार जो खून करता है उसे मृत्यु दंड मिलना ही चाहिए, उस गुनहगार के लिए अच्छा है, समाज के लिए अच्छा है, और राजा के लिए भी अच्छा है। खूनी को अगर राजा मृत्यु दंड नहीं देता है तो राजा को भी इसका जो परिणाम है मिलेगा, राजा को भी इसका फल मिलेगा, क्योंकि उसने अपना कर्तव्य नहीं निभाया है, सही जगह मृत्यु दंड नहीं दिया है उसने। तो ठीक उसी प्रकार से कोई भी दंड अगर हो तो उस दंड की सजा हमेशा मिलनी चाहिए, छोटा दंड क्यों ना हो, बड़ा दंड क्यों ना हो, चाहे वो खून का खून हो, चाहे वो चोरी हो, चाहे वो डकैती हो, आग लगाना हो, जो भी हो, हर एक चीज का दंड हमें मिलना चाहिए। और जितना जल्दी हमें दंड मिल जाता है, सही दंड मिल जाता है, उतना हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि हम सही मार्ग में चल सकते हैं फिर, और दूसरों के लिए भी अच्छा उदाहरण हो जाता है। तो इसीलिए चाहे हमारे साथ में कोई सही बोले गलत बोले, हमें इसे अच्छी तरह से स्वीकार करना चाहिए। कभी भी द्वेष भावना नहीं रखनी चाहिए, किसी के प्रति दुख की भावना नहीं रखनी चाहिए, भावना और दुख पहुंचाने की बात तो दूर है, क्योंकि हम वैष्णव हैं, हमेशा दूसरों का कल्याण करना चाहिए। जो हमारा कल्याण चाहते हैं, जो हमारा भला करना चाहते हैं और करते हैं, उनके प्रति अच्छी भावना रखना यह स्वाभाविक है और कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो हमारा बुरा चाहते हैं और बुरा करना करते भी हैं, उनके प्रति अच्छे भावना रखना यह बहुत बड़ी बात है। यह संतों के गुण होते हैं। जैसे हरिदास ठाकुर ने उस वेश्या के प्रति भी सही भावना रखी जो उसे पदभ्रष्ट करना चाहती थी। उन्होंने ईर्ष्या की भावना नहीं रखी, ये नहीं सोचा कि हम इनको सबक सिखाएंगे, उनको ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, नहीं, सही भावना रख के करुणा की भावना रखी। उस वेश्या का भी हित चाहा हरिदास ठाकुर ने। तो उसी प्रकार से हमारे खिलाफ भी कोई अगर बुरे विचार लगता है, बुरा व्यवहार भी करता है, हमें द्वेष की भावना नहीं रखनी चाहिए, बदले की भावना नहीं रखनी चाहिए, हमेशा दूसरों के प्रति सही भावना, एक अच्छी भावना रखनी चाहिए, और दूसरों के प्रति दूसरों को कभी भी दुख पहुंचाना नहीं चाहिए। हमें अच्छी तरह से ये जानना चाहिए कि हम दूसरों को दुख पहुंचाएंगे तो वो दुख अवश्य हमारे पास लौट कर आएगा, डबल डोज में आएगा। इसलिए जो व्यक्ति अपने आप शांत रहता है, दूसरों के प्रति बुरा विचार नहीं रखता है और व्यवहार भी बुरा नहीं करता है दूसरों से, वो संसार में सुखी हो सकता है। तो इसलिए अच्छा उपदेश सुनती महारानी ने ध्रुव महाराज को दिया। तो ऐसे ही हमें हमारे भक्तों को और हमारे परिवार के सदस्यों को इत्यादि ऐसे ही उपदेश हमें भी देने चाहिए, जिससे कि हमारे सारे भक्त समाज में आदर्श विचार और आदर्श व्यवहार हो, फिर कृष्ण भक्ति में हम अच्छी तरह से आगे बढ़ सकते हैं और हमारे जीवन को सफल बना सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो अभी आपकी बारी, अभी आप सुनाते जाइए कि आपने आज प्रवचन में कौन सी बातें सुनी। हाँ, सुनीति महारानी ने ध्रुव को उपदेश दिया कि हालांकि सुरुचि माता ने तुम्हें तुम्हारे प्रति कटु वचन बोले हैं, लेकिन फिर भी उनके प्रति गलत भावना नहीं रखना, उनको दुख मत देना। जो दूसरों को दुख देता है खुद हमेशा सुखी रहता है, नहीं दुखी रहता है। जो दूसरों को दुख देता है वो हमेशा उसको दुख मिलकर ही रहेगा। और क्या बातें सुनी आप? अगर कोई व्यक्ति एक हमारे प्रति कटु वचन बोलता है और अगर वो हमारे भलाई के लिए बोल रहा है तो हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। और कोई अगर हमारे व्यक्ति हमारे प्रति कटु वचन बोलता है जो सही है लेकिन हमारी भलाई के लिए नहीं बोल रहा है, वो द्वेष भावना से बोल रहा है, तो क्या करना चाहिए? फिर भी स्वीकार करना चाहिए। क्यों स्वीकार करना चाहिए? क्योंकि वह सत्य है, और सत्य स्वीकार करने से हमें क्या होगा? भगवान प्रसन्न होंगे और हमारी हमारी भलाई होगी, उसमें हम ही इस मार्ग में अच्छी तरह से प्रगति कर पाएंगे। लेकिन हम अहंकार पर बने रहे, ये कौन होता है मुझे बोलने वाला, अरे तो फिर क्या होगा? ना उसका भलाई होगा ना हमारी भलाई होगी। तो आप सोचिए, हमें सबको सोचना चाहिए। हमारे ऐसे सबके अनुभव हुए होंगे, हमारा व्यवहार कैसा रहा जब किसी ने हमारी गलती ढूंढ निकाली। एक सामने आते हैं ना, ए तुम कौन होते हैं बोलने वाले, इस बात को, ये जो उभर आते हैं हमारे हृदय में ये विचार, इसको हमें दबा देना चाहिए, इसको काट देना चाहिए। और क्या बातें सुनी आपने? हाँ, हाँ, अगर हमारी प्रशंसा कोई करता है तो इसमें खुशी की बात नहीं है, खुश नहीं होना चाहिए, बल्कि अविश्वास करना चाहिए। कम से कम अविश्वास करने का प्रयत्न तो करना चाहिए, भले अंदर अंदर से लगे हाँ ये सही बात है, अच्छी बात है, लेकिन कम से कम प्रयत्न तो करना चाहिए कि हम अविश्वास करें। और दूसरे वैष्णव के कोई प्रशंसा करे तो हमें इसमें खुशी होनी चाहिए। और कोई बात? हाँ, राजा ने कृपा सोचकर इसके ऊपर उसको छोड़ दिया। कृपा नहीं है वो, राजा सोच रहा है कि ये कृपा है लेकिन वास्तव में कृपा नहीं है। तो मृत्यु दंड मिलना ही चाहिए खूनी को, इसलिए हर एक कोई गलत काम है उसका दंड हर एक व्यक्ति को मिलना ही चाहिए। दंड मिलने से वो उस गलत काम के फल से बच जाता है, दंड नहीं मिलेगा तो फिर उसे उस गलत काम का फल आगे चल के बहुत बुरा मिलेगा। अगर उसे दंड नहीं मिलता है तो उसका भी भला नहीं होता, समाज के लिए भी अच्छा उदाहरण नहीं है, और जो अधिकारी व्यक्ति है जिसको दंड देना चाहिए था जिसने नहीं दिया है उसका भी बुराई होगा।